السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 27 دسمبر 2018 ایرنڈول جلوہ کے مقام ہے. یہاں پر جشن غوث الورا کے نام سے ایک پروگرام منعقد ہو رہا ہے جس میں حضور اشرف الفقہ کا خطاب ہونے جا رہا ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
سبحان الله.
صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على سيدنا
ومولانا محمد معادن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. میرے دوستو بزرگو، میں جانتا ہوں کہ سردی آپ کو بہت لگ رہی ہے، آپ سے زیادہ مجھے لگ رہی ہے. کیوں؟ آپ تو مل کر کے بیٹھے ہیں نا، اس کی گرمی اس کو، اس کی گرمی اس کو، سب ایک دوسرے کے لیے ہیٹر کا کام کر رہے ہیں. ہیٹ پورے مجمع میں ہے اور ہم کو اسٹیج پر، پھر اسٹیج کے اوپر کرسی، پھر کرسی کے اوپر ہم، سب کی ہیٹ ایک دوسرے کو مل رہی ہے. میری ہیٹ، مجھے کسی کی ہیٹ نہیں مل رہی، ہوا پوری کی پوری مجھے لگ رہی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سردی کتنی پڑ رہی ہے. لیکن مومن سردی اور گرمی، موسم اور کلائمیٹ سے گھبراتا نہیں. ایمان موسم سے متاثر نہیں ہوتا ہے، ایمان جو ہے اپنا اثر موسم پر ڈالتا ہے. یہ مومن موسم کو بدل دیتا ہے، موسم کے انداز کو بدل دیتا ہے، دریاؤں کی روانی کو بدل دیتا ہے. ایمان وہ چیز ہے، جنگلوں کی خطرناکی سے نہیں ڈرتا. کہنے والے نے کہا ہے، دشت تو دشت ہے،
دریا بھی نہ چھوڑے،
دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، یعنی ایمان والوں نے. دشت کہتے ہیں میدان کو، چٹیل میدان، दूर तक कहीं जिंदगी का निशान नहीं नजर आता। मोमिन ने जब घोड़े दौड़ाए हैं तो बड़े बड़े मैदानों को रौंद डाला है। इकबाल कहता है दश्त तो दश्त,
दरिया भी न छोड़े
हमने, दरियाओं पर घोड़े दौड़ाए, सब रोड पर घोड़े दौड़ाते हैं, लेकिन सहाबे कराम और मोमिनीन ने बिस्मिल्लाह कहके दरिया के ऊपर अपने घोड़े दौड़ा दिए। वली चलता है पानी पर, लेकिन सहाबा के घोड़े चल रहे थे पानी पर। ईमान वाले ऐसे थे कि जिस जानवर पर बैठ जाए वो भी पानी पर चलने में कामयाब हो। तो जानवर को फैज किससे मिला?
ईमान वालों से। बेशक
जानवर में ये सलाहियत नहीं है कि पानी पर दौड़े, लेकिन उसकी पीठ पर ईमान वाला बैठा था तो वो पानी पर दौड़ रहा। हम तो घोड़े और गधे नहीं है ना, हमने किसका दामन पकड़ा है?
गौस का
दामन पकड़ा है।
बेशक
हमें गौस पानी पर चलने का सलीका सिखाएंगे।
बेशक
दरियाओं की मौजों से हमें लड़ने का सलीका देंगे। सच्चे मोमिन तो बन जाओ। दश्त तो दश्त है,
दरिया भी न छोड़े
हमने,
बहरे जुल्मात
में दौड़ा दिए घोड़े हमने। बहरे जुल्मात है क्या? जमीन में एक जगह गुफा है, बहुत अंदर चले जाइए और एक वहाँ बहरे जुल्मात, उस अंधेरी में एक दरिया है जिसका नाम है, जिसमें पानी जो बह रहा है उस पानी का नाम है आबे हयात। अगर एक घूंट पानी मिल जाए तो आपकी जिंदगी इतनी लंबी हो जाए कि जब कयामत आएगी जब ही मरोगे। पियोगे पानी वो? मिला दू? नहीं पियोगे?
तैयार है पीने के लिए।
सब आते हैं हमसे, कहते हैं हमारी उम्र में दराजी की दुआ कीजिए। अरे दराजी की दुआ हम नहीं करेंगे, चलो बहरी जुल्मात में एक एक घोट पानी पी के आ जाओ। सिकंदर बादशाह ने ये तमन्ना की थी, दुआ की थी, अल्लाह मुझे बहरी जुल्मात में पहुंचा दे। परवरदिगार आलम ने उसकी दुआ कबूल कर ली। अपनी फौज को लेकर बहरे जुल्मात की तलाश में निकला। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने उसको रास्ता बता दिया, ये है बहरे जुल्मात में जहाँ आबे हयात बहता है। अपने घोड़े को डाल दिया, उसकी फौज चल रही है। जब उस दरिया के पास पहुंचा अंधेरे में, तो देखा कि एक साहब वहां बीमार मुर्गी की तरह झुकुर झुकुर कर रहे। तो बादशाह ने पूछा, तुम कितने दिन से हो? कहने लगा, हजारों साल गुजर गए। तो यहाँ क्यों करते हो? बोले पानी पी। न जिंदगी का मजा न मौत, अब यहाँ न कोई आगे है न पीछे है, खुजुर खुजुर बीमार मुर्गी की तरह कर रहा है, कोई सहारा नहीं है। बादशाह को इबरत हुई कि इस जिंदगी से मौत बेहतर है।
बेशक
कम से कम चार आदमी तो कंधे पर लेके चलते हैं, इसको तो कोई पूछने वाला नहीं। बेकश बे यारो मददगार पड़ा हुआ है। अपनी फौज से कहा, चलो हमें कुछ नहीं पीना। वापस आ गया। इकबाल कहता है, हमारा हौसला तो देखो, पानी पिया न पिया, दस्त तो दस्त है,
दरिया भी
न छोड़े हमने, और बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। ये हमारा हौसला है, लेकिन ईमान का जब हौसला मिलता है तो वो बेकस बेजारो मददगार नहीं होता। अभी मेरे अजीज ने बिलाल ने पढ़ा है, दिल को उनसे
خدا جدا نہ کرے,
خدا
جدا نہ کرے,
جدا نہ کرے.
آمین آمین.
جن سے
رسول اللہ
جنہوں نے پوری کائنات کو ایمان کی زندگی دی,
بے شک آمین.
اور وہ رسول پاک کہ جب مردہ قبر میں لٹایا جائے گا کوئی اس کا کس اور بے کس نہیں ہوگا, بے یار اور مددگار ہوگا, بے کسی کے عالم میں ہوگا, تو مصطفیٰ چلے آئیں گے مدینے سے,
بے شک
مرنے والے کو موت کا غم دور ہو جائے گا, ایک نئی زندگی مل جائے گی. جو زندگی بانٹتے ہیں قبر کے اندر, ایمان کی زندگی بانٹتے ہیں پوری دنیا میں, جس کو لینا ہے لے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل کو
ان سے
خدا
جدا نہ
کرے. اور اگر جدا ہو گئے, دعا فرما رہے ہیں خدا نہ ایسا وقت لائے, ایسی گھڑی لائے کہ ہمارے دل میں نبی کا خیال نہ ہو, نبی سے ہمارا دل جدا ہو جائے. مولا ایسا کبھی نہ ہو, بے کسی لوٹ لے, خدا نہ کرے. اگر ان سے ہم الگ ہو گئے تو بے کش ہو جائیں گے, کوئی ہمارا ہمدرد نہیں ہوگا, ساری دنیا منہ پھیر لے گی. مصطفیٰ کی شان ہے کہ جو ان کی طرف رخ کر چلے گا دنیا سائے کی طرح اس کے پیچھے چلے گی, اور جو مصطفیٰ سے الگ ہو گیا وہ دنیا کے پیچھے ڈھکڑ ڈھکڑ گھومتا رہے گا, کوئی اس کا ساتھ نہ دے گا. امام احمد رضا کی زندگی یہی ہے کہ دل کو ان سے خدا
جدا
نہ کرے, بے کسی لوٹ لے, خدا نہ کرے.
آمین آمین.
ہم سب کے لیے یہی دعا کرتے ہیں, مصطفیٰ کی یاد تمہارے دل میں ہمیشہ آباد رہنی چاہیے. اللہ حضرت فرماتے ہیں دل ہے, دل وہی دل ہے,
دل وہی دل جو تیری,
جو تیری یاد سے معمور رہا, دل وہی دل جو تیری
یاد سے
معمور رہا, سر سر وہی سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. مومن کا دل وہ دل ہے جس میں یاد مصطفیٰ ہے. بھائی دل کے دل تو آپ کے پاس بھی ہے نا, بکری کے پاس, بھینس کے پاس, اور جس پر پرتیبندھ لگا ہے اس پر,
اس کے پاس بھی
نہیں سمجھے, اس پر بھی, اس کو بھی دل ہے. اور یہی نہیں, مرغی کو,
اس کو بھی دل ہے,
بلی کو,
سب کو ہے,
جتنے جانور ہیں دل والے ہیں کہ نہیں, سب دلدار ہے. لیکن آپ کا دل اور بکری کے دل میں کچھ فرق ہے؟
جی
نہیں ہے. آپ کا دل کوئی کھاتا ہے؟ اگر کوئی دل نکال کے کھائے تو 75 کروڑ کی بلڈنگ میں جا کے اس کو زندگی گزارنی پڑے گی.
جی
75 کروڑ کی بلڈنگ دیکھا, جاؤ گے؟
نہیں سمجھاؤ گے,
نہیں سمجھے. ارے یہ جی بڑی قیمتی ہے, لیکن اس نے اگر گھسا دیا تو بڑے بڑے لوگوں کی نسیں ڈھیلی ہو جاتی, ناڑی ڈھیلی ہو جاتی. کہاں گئے؟ بہت قیمتی بلڈنگ ہے. قیمتی بلڈنگ مت دیکھو, سکون دیکھو.
واہ.
اگر جھوپڑی میں سکون ہے تو خدا کی قسم یہ دوستو, وہ تمہاری 10,000 کی جھوپڑی تمہارے لیے کارآمد ہے,
بے شک.
ہمیں 50 کروڑ کی بلڈنگ نہیں چاہیے جو جیل خانہ ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اب دنیا سجن, یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. یہ بہت قیمتی دنیا لگ رہی ہے نا, لیکن یہ قید خانہ ہے, جیل ہے. اگر اس جیل میں بھی آرام سے رہنا چاہتے ہو تو اس جیل میں بند ہونے کے بعد بھی مصطفیٰ کی یاد رکھو, اس جیل خانے میں بھی تم کو سکون ملے گا. اعلیٰ حضرت اس لیے فرماتے ہیں دل ہے, دل وہی دل
جو
تیری یاد سے معمور رہا, اور سر وہی سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا,
بے شک.
اس لیے بکری کا دل भैंस और गाय का दिल मत रखो, तुम उसका दिल रखो जिसमें सिद्दीक अकबर के दिल की चमक हो, अलीए मुर्तजा के वकार की जिसमें चमक हो। ऐसा दिल हमको चाहिए जिसमें उमर फारूक की अदालत हो, उस्मान गनी की शुजात, मुस्तफा की मोहब्बत अगर है तो तुम्हारे दिल में चमक ही चमक है। वहीं से रोशनी मांगो जहाँ से सारे सहाबा को रोशनी मिली है। अरे जिस बारगाह से चांद को रोशनी मिली है, सूरज को चमक मिली है, इसलिए मेरे इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले।
बेशक, बेशक।
सूरज को चमक मुस्तफा से, चांद को चमक मुस्तफा से, औलिया को चमक मुस्तफा से, सहाबा को चमक मिली मुस्तफा से, जहाँ जहाँ चमक दमक है सब मेरे मुस्तफा के करम की धमक है।
बेशक।
फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी
चमका दे,
चमका दे चमकाने वाले।
आमीन आमीन।
मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, ये बेहतरीन दुआ है। अगर किसी को कुछ याद ना हो वजीफा, तो ये दुआ कम से कम 100 मरतबा रोज पढ़ ले, इंशाअल्लाह उसके दिल में चमक और नूर पैदा हो जाएगा।
बेशक।
ये शेर याद कर लो, बड़ी अच्छी दुआ है।
बेशक।
चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने।
आमीन आमीन सुमामी।
ईमान में वो चमक है, ईमान में वो रोशनी है, ईमान में वो गर्मी है। तो मोमिन कलाई में से नहीं घबराता, मौसम से नहीं घबराता, अरे ये मौसम मोमिन के ईमान से घबराता। मोमिन का ईमान सलामत है तो सब कुछ सलामत है। ए लोगों, ईमान की सलामती कहाँ से मिलेगी जो खुद ईमान वाला हो। ये बारगाहें जो है किनकी है? ईमान वालों की है। ये आस्ताना औलियाए किराम का ईमान वालों का। जब किसी आस्ताने पर जाओ तो बस एक तमन्ना लेके जाओ, हमारा ईमान महफूज है, गुमराहों से हमको बचा दो बाबा, इसलिए मत जाओ टाटा बिरला बना दो, अंबानी बना दो, इसलिए मत जाओ, ये तो इनके घर इनके हाथ की धूल है। अरे तुम मेहनत करो टाटा बिरला के नवासे पोते बन जाओगे, लेकिन ईमान कहीं नहीं मिलेगा। कानून के खजाने में दौलत मिलेगी और इनके खजाने में मोहब्बत रसूल का खजाना मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अशरफुल फुकहा, हुजूर अशरफुल फुकहा। जो हर जगह मिले उनको मांगने के लिए यहाँ क्यों आते हैं? यहाँ वो मांगो जो कहीं नहीं मिलती, जो कहीं नहीं मिलती कीमत वो यहाँ से आकर वो गौशे पाक से मांगो। एक कीनिया घर था, कीनिया घर समझे, तांबे से लोहे से वो ऐसी जड़ी बूटी तलाश करके उस पर घिसता है तो लोहा सोना बन जाता है। ऐसे ऐसे खत्ती बहुत मिलेंगे आप।
खत्ती
खत्ती है वो,
सही
है। पूरी जिंदगी जंगलों में टाँगक टोलिया खेलते रहते, ये जड़ी कौन सी है, ये जड़ी कौन सी, यहाँ घिसेंगे वहाँ भट्टी लगाएंगे, कब होता है सोना, कब होता है सोना। वो सोने सोने में ऐसे सो जाते हैं कि कब्र में पहुँच जाते हैं, सोना बनता ही रहता।
सही।
ये खत नहीं तो और क्या, इतनी जुस्तजु अगर दिल को सोना बनाने में लगा दे, हाय हाय, तो कब्र में आराम से सोना मिला। आला हजरत फरमाते हैं खाक होकर इश्क में
आराम से सोना मिला,
आराम से सोना मिला।
बेशक।
मुस्तफा के इश्क की भट्टी में जल जाओ सोना मिल जाएगा।
बेशक।
खाक होकर इश्क में
आराम
से सोना मिला,
जान
की एक शीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। सोने की कोई कीमत नहीं। एक कीमिया घर था, जंगलों में खूब घूम रहा था, इधर उधर न बाल बच्चों की फिक्र, न खाने कमाने की फिक्र। एक शख्स ने कहा, अरे क्या इधर उधर टाबक पेड़िया खेल रहा है, एक सठ बासठ कर रहा। कहा, सोना बनाने के लिए जड़ी बूटी तलाश कर रहा हूँ। कहा, हम तुमको एक आदमी का पता देते हैं, वो बहुत अच्छा कीमिया का फार्मूला जानते हैं। अरे चलती बताओ। कहा, चला जा दिल्ली, एक अल्लाह के वली हैं, उनका नाम निजामुद्दीन औलिया है, वो सोना बनाना जानते हैं। जा उनका पैर दबा, उनका हो जा, सोना बनाने का ढंग मिल जाएगा। जंगलों में क्या जाकर के अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। बस चला दिल्ली आया और हजरत के खानकाह में पहुंचा। हजरत उस वक्त बाथरूम इस्तिंजा करने के लिए जा रहे थे। ये रास्ता घर से निकले हजरत खानकाह से और इस्तिंजा खाने की तरफ जा रहे थे। ये इतने में आ गया, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, मुसाफा किया, दस्तबोसी की। तो हजरत फरमाते हैं, हम अभी जा रहे हैं इस्तिंजा करने के लिए, हमारे लिए कुलूख का झेला लाओ। अब तो लोगों ने कुलूख समझना भी छोड़ दिया। पहले पेशाब करके सुन्नत ये है कि ढेला लगाओ और जितना पेशाब का कतरा है वो सूख जाए फिर पानी से धो लो। खैर पानी से धो भी लेते वो भी हो जाता, लेकिन अफजल ये है। हजरत ने हम महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया, हम इस्तिंजा के लिए जा रहे हैं, जा बाहर से ढेला लेके आओ। भैया जल्दी जल्दी, बोले हजरत खिदमत ले रहे हैं तो बोलूंगा, हजरत आपके खिदमत की है, जल्दी से मुझे फार्मूला बता दीजिए। गया लेकर के आया ढेला। हजरत ने लिया, हुजूर लीजिए। हजरत ने हाथ में लिया और मुस्कुराए, कहा, अबे मैंने तुझसे ढेला और खड़ू माना था, तू तो सोना लेके आया।
हाँ।
बोले हजरत मैंने तो खड़ू समझा था, खड़ू समझे लिखा टुकड़ा ढेला समझे मिट्टी का, हमने तो उससे ढेला मांगा था, तू तो सोना लाया। ढेला तो वाकई सोना है। बोले हजरत मैंने तो ढेला समझ के लिया। बोले देख। तो बोले हाँ सोना। बोले रख ले। रख लिया। फिर फरमाया, जा हम इस्तिंजा करने गए, सोने से थोड़ी इस्तिंजा करते हैं। ढेला लेके आ। गया उठाया ढेला, उसको इधर से उधर से इधर से देख रहा है कि ढेला है कि सोना। वो ढेला ही था। इत्मीनान से ला के दिया, हुजूर लीजिए। फरमाते फिर लाया सोना, मतलब फिर सोना लाया। कहा हुजूर खुद देख के इधर से उधर औंधा चित्ता करके सब देख लिया तो ढेला था। फरमाया अच्छा रख ले, जा फिर ले गया। फिर गया तो ढेले को लेके खुरच खुरच के देख रहा कि अंदर मिट्टी है या सोना। काफी उसको खुरचा तोड़ा, देखा तो अंदर भी मिट्टी थी बाहर भी मिट्टी थी। लेके कहा कि हुजूर ये लाया मिट्टी दीजिए। हाथ में रखा, बोले ये भी तो सोना। तूने अंदर मिट्टी देखा, ये तो अंदर से बाहर से सब सोना है। फिर फरमाते हैं मियां, हाथ जंगल में जड़ी बूटी से कीमिया नहीं बनता, सोना नहीं बनता। दिल की कीमिया अल्लाह की याद से बना ले तो मिट्टी हाथ में रखेगा तो सोना बनेगा। समझे? कुछ बोला भी नहीं था, किस मकसद के लिए आया था जाहिर भी नहीं किया था। एक अजनबी है, पहले दिन खानकाह में आया, लेकिन किस मकसद से आया, जिस मकसद से आया महबूब इलाही ने वो मकसद पूरा करके बता दिया। क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हो? सोना मिल जाए, टाटा बिरला बन जाए, आ अल्लाह वालों के दरबार में, आ अल्लाह की बारगाह में, दिल को सोना बना ले तो ये दिल का कीमिया ऐसा है कि लोहे को भी अगर ठोकर लगेगी तो वो सोना बन जाएगा।
बेशक बेशक।
चले जाओ अहमदाबाद में देख लो बटवा शरीफ, वहाँ कुतुबे आलम का मजार है, शहर में शाह आलम का मजार है और शाह आलम के वालिद साहब कुतुबे आलम उनका मजार शहर से बाहर बटवा शरीफ में है। एक दिन हजरत रात को तहज्जुद की नमाज के लिए मस्जिद जाने के लिए अपनी खानकाह से बाहर निकले, अंधेरा था उस जमाने में, लगती तो थी नहीं, आपको ठोकर लगी, एक पत्थर था रास्ते में पड़ा हुआ था, चलते चलते आपको ठोकर लगी, तो आप फरमाते हैं लोहा है कि लक्कड़, पत्थर है कि कंकर, जने क्या,
जने क्या है
उस जमाने की उर्दू
जी, जने क्या है,
अल्लाह वाले की जबान से निकल रहा है, लोहा है कि लक्कड़, लक्कड़ समझे
लकड़ा,
लकड़ा, लोहा है कि लक्कड़, कंकर है कि पत्थर,
जने क्या है।
एक कंकर एक होता है वो बहुत देहंगम जैसे जमीन से निकलता है और पत्थर चिकना होता है, फरमाते हैं लोहा है कि लक्कड़, कंकर है कि पत्थर,
जने क्या,
जने क्या, ये कह करके चले गए। अब सुबह वो पत्थर एक तरफ लोहा था, एक तरफ लकड़ी, एक तरफ पत्थर, एक तरफ कंकर और एक तरफ जने क्या। अंग्रेजों के जमाने में उस पर रिसर्च हुई, लंदन तक उस पर रिसर्च करने वालों ने रिसर्च किया, बताया ये हिस्सा लोहा है, ये हिस्सा लकड़ी है, ये हिस्सा पत्थर है और ये है कंकर। जब इस पर आते फिर वो सब बोलते थे जाने क्या, यानी न जाने ये क्या चीज। आज भी वो जो एक बुजुर्ग की जबान से निकला है, जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे वो पत्थर का टुकड़ा अपनी शक्ल बदलता जा रहा है। अरे वो पत्थर का बोले लोहा है कि लक्कड़, तो लोहा बन गया, लकड़ी बन गया, फिर फरमाते कंकर है के पत्थर, तो कंकर भी बन गया, पत्थर भी बन गया, और फिर फरमाते जने क्या है, चल तो उसमें न जाने क्या है। आज बड़ी बड़ी लेबोरेटरी सिसक रही है लेकिन अल्लाह वालों की जबान से निकली हुई बात जने क्या है, सबको यही कहना पड़ता, जने क्या, जने क्या, जने क्या, रख अपनी लेबोरेटरी, अपनी रिसर्च फैकल्टी को ब्लॉक लगा दे, मुस्तफा प्यारे के चाहने वाले दिल को कीमिया बनाने वाले की ये शान होती है, बोलते जाते हैं और पत्थर का टुकड़ा अपनी शक्ल बदलता चला जाता है, अल्लाह वालों की जुबान में ये तासीर होती है। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अशरफुल फुकहा, हुजूर अशरफुल फुकहा। हम तो दुआ करते हैं गौसे पाक हमारे दिल को भी एक दिन ठोकर मार दीजिए, और ठोकर मार के कहिए ये गोश्त है या पत्थर है या कंकर है या लोहा है, जने क्या है। अगर ये कह देंगे जिस दिन, तो हमारा सख्त दिल पत्थर एक तरफ जरूर होगा लेकिन एक ऐसा टुकड़ा होगा कि कोई उसको समझ न सकेगा, इसीलिए वली को लोग समझ नहीं पाते हैं कि अल्लाह की मार्फत वाले ठोकर लगाकर कहते हैं ये आदमी है कि जानवर है, जने क्या है, आदमी दिखता है लेकिन जने क्या है, लोग वली को समझ नहीं पाते। ये औलिया इकराम की ठोकर का ये कमाल है, मुर्दा पड़ा है मार दिया चल यहाँ से तो भागने लगता है। हमारे नागपुर में बाबा ताजुद्दीन का नाम सुना है, नहीं सुना है, जब वो राजा रघु जी यहाँ रहते थे और वहाँ से निकलकर मस्ती में वो शकरदरा रोड पर आए तो रास्ते में एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा हुआ था, वहाँ से गुजरे, बोले अरे क्यों पड़ा है, अरे बस यहाँ से तो भिड़ा के भाग गया।
बेशक
लोगों ने देखा ये एक दो दिन से मरा पड़ा कोई उठा नहीं रहा बाबा ने एक ठोकर मारा तो जिंदा हो गया। ये अल्लाह वालों के कदमों की बरकत है वो जुबान की बरकत है। अरे जो कह देंगे वो हो जाएगा इसलिए अल्लाह वालों के दरबार में आते हैं। एक दिन जुबान से कह दे अल्लाह इसे नेक बना दे तो नेक बन जाएगा। परवरदिगार आलम इसे वली बना दे तो वली बन जाएगा। ये सब की सब खूबियाँ अल्लाह वालों की जुबान और उनके ठोकर। हजरत गौसे आजम पहले आला हजरत का बता चुका
हूँ।
आला हजरत के दरबार में एक साहब नजूमी आए। नजूमी समझते हैं नज्म कहते हैं सितारे को। ये नजूमी लोग सितारा देखते हैं ये ग्रह फला जगह है ये है वो। यहाँ आएगा तो बारिश होगी वहाँ जाएगा तो खर्शाली पड़ेगी यहाँ आएगा तो एक बीमारी आएगी। वो सितारों के बड़े माहिर होते हैं उनको कहते हैं नजूमी। एक मोहम्मद हुसैन साहब बड़े नजूमी बरेली शरीफ में थे आला हजरत के पास आया जाया करते थे। एक दिन आए जबकि बारिश का कोई मौसम नहीं था। अभी दो तीन महीने के बाद बारिश होने का मौसम था। आला हजरत से बातचीत की तो आला हजरत ने यूं फरमाया कि मोहम्मद हुसैन साहब आपके इल्मे नुजूम के मुताबिक बारिश किस महीने में होगी। तो उन्होंने कागज लिया हिसाब किताब इधर उधर सब करके और निकाला कहा हुजूर मेरा हिसाब इल्मे नुजूम का ये बताता है कि तीन महीने के बाद बारिश होगी। तो आला हजरत फरमाते हैं आपका इल्म बता रहा है तीन महीने के बाद बारिश होगी और अभी हो जाए तो। बोले हुजूर अभी तो कोई इसमें जायशा मिल ही नहीं रहा है फरमा अगर हो जाए तो। इतने में खड़ा खड़ा की आवाज आ गई जो लोग बैठे थे बाहर मुड़ के देखते बोले हुजूर बारिश हो रही। नजूमी साहब आपकी माय मालूम कि अल्लाह की बात मालूम ये सब यही इल्म धरा रहता है। अल्लाह वालों की जबान गलत नहीं होती। तुम्हारा साइंस नजूम ये सब का सब इल्म जन्नी है यकीनी अगर है तो अल्लाह वालों की जबान यकीनी जो कह देंगे वही होगा। हजरत गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु एक जगह बहुत लंबा वाकया है बता देता हूँ।
जी जी साहब
शेख अहमद एक तालिबे इल्म थे जो हुजूर गौसे पाक के यहाँ सबक लिया करते थे। शेख अहमद ने शेख अबुल हसन वो पढ़ा करते थे और उनकी आदत थी कि ऐसे वक्त में उठ जाते थे जिस वक्त हुजूर गौसे पाक तहज्जुद के लिए बाहर तशरीफ लाते। उसे पास सोते नहीं थे लेकिन बाहर तशरीफ लाते और मस्जिद में आकर तहज्जुद पढ़ते। ये अबुल हसन जो तालिबे इल्म थे इनकी आदत थी कि हजरत के आने का वक्त हो गया तो लोटे में पानी हाथ में मिसवाक लेकर के इंतजार करते। हजरत आते उनको वजू करवाते हजरत मिसवाक करते और फिर मुसल्ला बिछा देते हुजूर गौसे पाक तहज्जुद पढ़ते थे। कैसे अच्छे तालिबे इल्म ये लोग और आज के तालिबे इल्मों को देखो उस्ताद का मजाक बनाते हैं
सामने बैठे
हैं
है? सामने बैठे ही हैं।
हाँ बैठे
ये मदरसे के
तो मैं इस पर बदगुमानी नहीं कर रहा हूँ कानून बात कर रहा हूँ। उस्ताद का एहतराम आज तालिबे इल्म नहीं कर रहा। उस्ताद कमरे में है और ये धीना मुश्ती इसकी टोपी वहाँ उड़ रही है इसके कान को पीछे से चिमटी ले रहा है किसी को यूं कर रहा है एक तूफान है बदतमीजी रहता है हंसते हैं बच्चे करते हैं
करते इसीलिए
ऐसा मत करो उस्ताद का एहतराम करो। हजरत गौसे पाक के शागिर्द ने एक दिन हस्बे मामूल पानी लिया मिसवाक लिया मुसल्ला लिया और हुजूर गौसे पाक अपने वक्त पर बाहर तशरीफ लाए। लेकिन आज शेख अबुल हसन को देख भी नहीं रहे, सीधे मेन गेट जो मदरसे का मेन गेट था वहां चले गए। इन्होंने लोटा निस्वार्थ मुसल्ला वहीं रखा कि आज कुछ नया मामला होने वाला है।
बेशक
हजरत ने मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी। जब हजरत मदरसे के मेन गेट पर पहुंचे तो उसमें लॉक लगा हुआ था, ताला लगा हुआ था। हुजूर गौसे पाक वहां बैठे पहुंचे, ताला खुल गया, गेट खुल गया, हजरत गौसे पाक बाहर निकले। ये तालिबेन भी कदम संभाल संभाल कर ही हजरत को पता न चले कि मैंने पीछा किया। हजरत चले जा रहे हैं, ये भी पीछे पीछे। शहर पनाह, शहर पनाह जानते नहीं, बाहरी देख लो गेट है ना। अंदर शहर होता था और हर तरफ शहर के किनारे किनारे दीवार होती थी और चार गेट होते थे और रात के वक्त बादशाह और नवाब के हुक्म से वहां जो गेट कीपर होता था वो दरवाजा बंद कर देता था। न बाहर का आदमी अंदर आता था और न अंदर का बाहर जा सकता था बिना परमिशन के। शहर पनाह के पास हजरत गौसे आजम पहुंचे और बगदाद के शहर पनाह का गेट बहुत बड़े बड़े थे। 15-15 आदमी उस गेट को सुबह खोला करते थे और बंद करते थे। हुजूर गौसे पाक जब उस दरवाजे के पास पहुंचे, खड़े हुए, वो गेट खुल गया। हुजूर गौसे पाक ने कदम बाहर निकाला। ये तालिबे इल्म भी पीछे पीछे, इनका तो ख्याल था कि हजरत को मालूम नहीं है कि मैं भी पीछे पीछे आ रहा हूं। वो तालिबे इल्म ही थी, लेकिन ये तो पीर रोशन जमीर थे।
बेशक बेशक
कौन आ रहा है सब मालूम था, लेकिन बोल नहीं रहते, चल आना है तो आ। शेख अबुल हसन फरमाते हैं, मैं गौसे पाक को देखा, एक कदम रखा और आगे बढ़े, दूसरा कदम रखा। जब दूसरा कदम रखा तो मैंने भी एक कदम बढ़ाया तो देखा बगदाद गायब, पूरा शहर गायब, नया शहर आ गया। एक कदम में एक शहर से दूसरे शहर
पहुंचा।
फरमाते हैं फिर हजरत गौसे पाक आगे बढ़े, मैं भी आगे बढ़ा, देखा तो एक मकान है, उसका दरवाजा खुला। हजरत अंदर चले गए, मैं भी जल्दी से अंदर घुस गया कि कुछ न कुछ मामला है। कहने लगे एक पिल्लर और खंभा था, मैं उस खंभे के पीछे इस तरह छिप गया कि हजरत मुझे देख न पाए। और कुछ लोग नूरानी शक्ल वाले वहां बैठे थे, हजरत उनके पास जाकर बैठ गए। अबुल हसन कहते हैं कि मैं एक कमरा था, उसमें से कराहने की आवाज, जैसे किसी को बड़ी तकलीफ है, कराह रहा है, आवाज आ रही है, मैं समझ गया कोई इसमें बीमारी बीमार है। और हुजूर गौसे पाक उन नूरानी शक्ल वालों के पास बैठ गए। बोले चंद लम्हा गुजरा कि उस कराह की आवाज बंद हो गई और थोड़ी देर में एक शख्स को देखा अपने कंधे पर एक आदमी की लाश लेकर के बाहर निकला और निकल करके गायब हो गया। हुजूर गौसे पाक उन अल्लाह वालों से गुफ्तगू कर रहे थे। शेख अबुल हसन कहते हैं मैं सब मंजर देख रहा था, थोड़ी देर में वो जो लाश लेकर जाने वाला था उधर से आया और उसके हाथ में एक बहुत भयानक आदमी था, बड़े बड़े बाल, मूछें, और उसकी हालत ऐसी थी लगता था कोई हवनक आ गया। ला करके हजरत गौसे पाक के सामने बिठा दिया। हजरत गौसे पाक ने कहा इसकी मूछें शरीयत के मुताबिक छोटी छोटी की जाए। वो मूछ नहीं थी, बकरी की पूंछ थी, अरे बड़ी बड़ी। फरमाया इसके बाल औरतों जैसे हैं, काट करके शरीयत के मुताबिक किया जाए। फौरन बाल काटे गए, फरमाया इसको गुस्ल कराया जाए। गुस्ल कराया गया, इस्लामी लिबास पहनाया, फिर ला करके बिठा दिया गया। हजरत गौसे पाक ने उसको देखा, कलमा पढ़ने लगा,
सुभान अल्लाह सुभान
अल्लाह। फिर दूसरी नजर डाली तो मोमिन से वली बना दिया,
सुभान अल्लाह।
फिर तीसरी नजर डाली नदी से कुतुब बना दिया, चौथी नजर डाली तो कुतुब से ऊंचा मर्तबा अब्दाल का आए उसे अब्दाल बना दिया। और वो जो पकड़ के लाए थे उनसे फरमाया ऐ खिज्र, वो खिज्र अलैहिस्सलाम, इसका हाथ पकड़ो और उसकी जगह इसको मुकर्रर कर दो।
सुभानअल्लाह,
उसकी जगह
इसको मुकर्रर,
इसको मुकर्रर कर दो। ये फरमा कर सलाम किया और वहां से हजरत गौसे पाक लौटे। शेख अबुल हसन कहते हैं मैं भी दबे पांव पिल्लर के इस तरफ से घूम करके हजरत गौसे पाक के पीछे 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 कदम दबाकर चला कि खबर न होने पाए। जैसे ही वो मदरसे के गेट पर आए, मदरसा का गेट खुल गया, हजरत बाहर आए, बगदाद के शहर पनाह पर एक कदम में आ गए, वहां का गेट भी खुल गया। हजरत अंदर गए और अंदर जाने के बाद अपनी खानकाह में चले गए। बोले मुझे तो वो आ गया बुखार, ऐसा मंजर मैंने देखा, और जाकर के बड़ी मुश्किल से अपने बिस्तर पर लेट गया। फजर की नमाज के बाद दरसगाह लगी, क्लास शुरू हुआ, तो मैं भी आया क्लास में। तो हजरत गौसे पाक पढ़ाने के लिए बैठे, फरमाते हैं अबुल हसन पढ़। बोले आज मेरी ही बारी पढ़ने की, वरना पढ़। बोले मेरी जबान नहीं खुल रही थी, इतना डरा हुआ था। फिर फरमाया पढ़, फिर भी मेरी जबान नहीं खुल रही है। तीसरी मरतबा में फरमाते हैं अरे पढ़, जो देखा था सही था।
सुभानअल्लाह,
जो देखा था
सही था,
सही था। कहा हुजूर सही तो था, मैंने गलत नहीं कहा, लेकिन वो क्या था
वो बता दीजिए।
वो बता दीजिए, अब हिम्मत आ गई।
सुभानअल्लाह।
तो वैसे पाक ने फरमाया थे जहाँ हम लोग पहुंचे थे एक कदम में, वो मुल्के शाम था, और जो मकान तुमने देखा था वो अब्दाल लोगों के रहने की जगह थी, जहाँ 40 अब्दाल रहते थे। उसमें से एक, ये जो बैठे हुए थे ये 39 थे, और 40वां अब्दाल जाकनी के आलम में था। फरमाते जो तू सुन रहा था आह आह की आवाज, वो बीमार अब्दाल की आवाज थी, और जब उसकी आवाज बंद हो गई तो उसका आखिरी वक्त था, इंतकाल हो गया। फिर हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम उसकी लाश को लेकर के वो गए और उसके कफन दफन करके वो वापस आए, और जिसको लाए थे वो कुश्तुन तनिया और तुनिया इटली का जो सबसे बड़ा गिरजा घर है, जहाँ पोप पाल रहता है। पोप पाल सुना है, जो ईसाइयों का सबसे बड़ा पादरी। बोले वो वहां का गिरजे का सबसे बड़ा पादरी था, उसे लेकर आए थे। उसका तमाम हुलिया शरीयत के खिलाफ था, मैंने उसको शरीयत के मुताबिक लिबास पहनाया, बाल कटवाए, मोज कटवाई। ये पहली मंजिल है, वली वही होता है जो शरीयत का पहले पाबंद।
बेशक
ये गौसे पाक हमें सबक दे रहे हैं, औरतों की तरह बाल बढ़ा करके जटाधारी बन करके, और कहता हूँ अबे काय का कादरी, वहाँ से पादरी आया था। गौसे पाक ने शरीयत का मॉडल बना के कादरी बनाया, और दिल होकर के पादरी बनाओ। आजकल कितने कादरी होने का दावा करते हैं, बड़े बड़े लेक्चर देते हैं और बोलते हैं हम पाक साफ है, तैयबू ताहिर है, कादरी हैं, लेकिन ये कादरी पादरियों का साथ देता है। और मेरे गौसे पाक के दरबार में पादरी एक्चुअल ठेठ पादरी आया था, निगाह डाली तो पादरी को पादरी बना दिया। वो कैसे पादरी हैं जो पादरियों की नकल करते हैं? ऐ मेरे दोस्तों, ये गौसे आजम की निगाह का असर था, वलियों की जबान में भी असर,
बेशक
जो कहते वो हो जाए, उनकी ठोकर में असर, जो ठोकर मार दे वैसे ही बन जाए, और निगाह होने के असर काफिर को मुसलमान बना दे, रब्बे कायनात मोमिन बन गया है, इसे कुतुब और अब्दार बना दे। अल्लाह ताला ने गौसे पाक की जुबान में उतना असर रखा है कि वो आया था पादरी और बन गया अब्दार।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, निगाहे गौसे आजम, निगाहे गौसे आजम।
अबुल हसन, शेख अबुल हसन फरमाते हैं कि ऐ अबुल हसन सुन, मैंने हिजर से कहा इसको उसकी जगह मुकर्रर कर दो, जो अब्दाल इंतकाल कर गया था वो जगह खाली हो गई थी, गौसे पाक ने एक पादरी को पादरी बनाकर अब्दाल बनाकर और चंद मिनट में उसकी पोस्टिंग भी कर दी। ये जगह जो खाली हुई है इंटरव्यू की जरूरत नहीं है, कॉल भेजने की जरूरत नहीं है, 10 आदमी का इंटरव्यू लेंगे और अपने मनपसंद की अपने रिश्तेदार को पोस्टिंग कर देंगे। गौसे पाक के यहाँ अपना गैर कुछ भी नहीं है, निगाहें गौसियत पड़ी तो गैर को अफसर बनाकर पोस्टिंग कर
दिया।
बेशक
ये पावर किसको मिला है? अल्लाह वालों को, जिनकी ठोकरें खा लो जिंदा
हज़रत,
इनकी निगाहों के सामने आ जाओ और क्या मांगना? ईमान मांगना,
बेशक
दीनदारी मांगना, मालदारी मांगने के लिए कभी मत आना। आओ तो आओ दीनदार बनने की भीख मांगो। मेरा दावा कि जो अल्लाह वालों से दीनदारी मांगेगा रब्बुल आलमीन उसे दुनियादारी भी अता
फरमा देगा।
जबकि दीनदारी भी अल्लाह की अता से है और दुनियादारी भी अल्लाह की अता से है, जब चाहे उसकी दुनियादारी छीन ले, बड़े बड़े बादशाह को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया कुदरत ने, और बड़े बड़े भीख मांगने को रब्बुल आलमीन ने तख्त के ऊपर बिठाकर शाही अता फरमा
दिया।
वह इज्जत मंतशा, वह तो जिल्ल मंतशा, बेयद कल खैर इन्नका अला कुल्ले शैइन कदीर। इस हकीकत को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं और रब ने उन्हें ये मकाम अता फरमाया है कि जिसको जो चाहे कह दे वो हो जाए, और मुस्तफा के करम से गौसे पाक को भी ये कुदरत मिली।
बेशक
अल्लाह की कुदरत क्या है? इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून।
बेशक बेशक
ये कब फरमाया था अल्लाह ताला ने? हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी शादी नहीं हुई थी, कुमारी पाक मरियम थी, अल्लाह की बाग, अल्लाह की इबादत करने के लिए उन्होंने इबादत खाना बनाया था, दिन रात अल्लाह की इबादत करती थी। कुरान फरमाता है हम उनके लिए जन्नत का खाना भेजते थे,
बेशक
पकाने की जरूरत नहीं, फल फ्रूट आता है उठा करके देख लेना कुरान मजीद में, तफसील का वक्त नहीं है। हजरत मरियम के पास फरिश्ते आए और कहने लगे قالت الملائكة يا إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا وفي الآخرة ومن المقربين. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت مریم کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ نے تم کو خوشخبری سنائی ہے، پروردگار عالم نے یہ بشارت دی ہے کہ وہ کلمۃ اللہ عیسیٰ کو تمہارے شکم سے پیدا کرے، وہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، وہ باوقار عزت والا ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی،
بے شک
ومن المقربین اور میرے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ اور بھی اس کے بعد آیتیں ہیں ये सब सुनने के बाद हजरत मरियम ने उस फरिश्ते के सामने जो बात कही है वो अल्लाह ताला फरमाता है, कालत रब अन्ना यकून ली वलद वलम यमससनी बशर, रब अन्ना यकून ली, ए परवरदिगार आलम मुझे तो किसी इंसान ने छुआ तक नहीं है, मेरी शादी नहीं हुई है और मेरे लड़का कैसे होगा। हैरत की बात थी ना,
बेशक
हजरत मरियम ने अपनी हैरत का इजहार किया तो रब ने इरशाद फरमाया, काल कज़ालिक यखुल कद काल कज़ालिक यखलुक मा यशा, ए मरियम देख अल्लाह जिस तरह चाहता है किसी को पैदा कर दे,
बेशक बेशक
वो माँ और बाप का मोहताज नहीं है, आदम को बगैर माँ और बाप के पैदा कर दिया। फइन्नमा यकूलु लहू कुन फयकून,
बेशक
जब अल्लाह ताला किसी काम का इरादा करता है तो फरमाता कुन हो जा, फयकून तो चीज हो जाती है,
बेशक
उसको फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है, शादी ब्याह कराने की जरूरत नहीं है, वो हर जरूरत से पाक है,
बेशक
रब्बुल आलमीन को कुदरत है, कुन हो जा तो जमीन हो जा रही है, आसमान हो जा रहा है। एक बच्चे को तेरी गोद में देने के लिए अल्लाह ताला माज़ अल्लाह मजबूर नहीं है, ऐ मरियम तैयार हो जा, मेरी कुदरत है, कुन फयकून,
बेशक
यह है अल्लाह की खास कुदरत। और ये कुदरत अल्लाह ताला ने अपनी अता से अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दी है,
बेशक
हुजूर कह दे ऐ जमीन सुराका को पकड़ ले, चलते हुए घोड़े को जमीन पकड़ ले,
बेशक बेशक
और फरमा के उतरो की है छोड़ दे तो जमीन छोड़ देती,
बेशक
ये है कुल फयकून, एक नहीं हजारों हदीसें मैं पढ़ सकता हूँ। और यही कुदरत हुजूर के सदके में गौसे आजम को मिली,
बेशक
जिसको बोलने हो जा तो हो जाए,
बेशक
आला हजरत इसको इस तरह बयान करते हैं, अहद
से अहमद
से अहमद
सुभान
और अहमद से तुझको,
तुझको वाह,
अहद अल्लाह की सिफत है, कुल हुवल्लाहु अहद,
बेशक
अहद से या रसूल अल्लाह किसको मिला, आपका नाम अहमद है। कुरान मजीद फरमाता है कि हजरत ईसा ने कहा, मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, हुजूर का नाम अहमद आया है कुरान मजीद,
बेशक
अला हजरत फरमाते अहद से
अहमद
अहमद और अहमद से
तुझको
तुझको, ये तुझको यानी ए गौस,
ए गौस
अहद से अहमद, अहमद से तुझको, सब कुन मकुन सब कुन मकुन हासिल है या गौस,
बेशक
अल्लाह की हकीकी कुदरत है, उसने अपने हबीब को अता की है और आप मेरे मुस्तफा के लाडले फर्जंद हैं, मुस्तफा ने भी ये कुदरत आपको अता की।
सुभान अल्लाह,
काफिर को कहते हैं मोमिन हो जा तो मोमिन हो जाता है,
बेशक
मोमिन को बोलते हैं वली बन जा तो वली बन जाता है,
बेशक
ये मेरे होश पाक का वो कमाल है, आप एक जगह नहीं सैकड़ों जगहों पर आप देखेंगे। एक साहब आए होश पाक की खिदमत में, पांच मिनट और दे देंगे,
नहीं नहीं बोले बोले बोले,
सब ठंडे हो रहे हैं ऐसे कर। एक साहब आए कहने लगे, हुजूर मुझे औलाद चाहिए, हम भी यहां जाते हैं लोग लोन ले लेके पढ़ते हैं, हुजूरों से पाक की आदत थी कोई अगर हाजतमंद आता तो लोहे महफूज एक किताब है जिसमें सारी दुनिया की तकदीर लिखी हुई है, हजरत गौसे पाक यहां बैठते थे और लोहे महफूज पर निगाह डालते थे, और एक एक आदमी की तकदीर पढ़ लिया करते थे। मुनीब अशर की तकदीर में क्या है, गुलाम मुशर्रफ की तकदीर में क्या है, फलांगी की तकदीर में क्या है, सब पढ़ लिया करते। हजरत गौसे पाक ने फरमाया है, आने वाले तेरी तकदीर में औलाद नहीं है। तो वो आने वाला भी बड़ा कट्टर था
जी,
टनाटन सुनने था, वलियों की मदद पर उसे पूरा ईमान और यकीन था। उसने कहा सरकार अगर तकदीर में औलाद होती तो आता क्यों, नहीं थी कभी तो आया।
बेशक
उसे पाक ने फतवा नहीं लगाया, जिद करने आया सरकार से नहीं, मुस्कुराए फरमाया कि ठीक है, नहीं चलेगा बगैर औलाद लिए हुए, आप मेरी पीठ से अपनी पीठ मल दे। उसने अपनी पीठ ऐसे हजरत गौसे पाक की पीठ से मल दी, उसके नसीब को तो देखो, गौसे पाक की पीठ से पीठ लग गई, पीठ लग रगड़ करके चला। फरमाया तुझको 9 महीने के बाद लड़का होगा। क्या होगा, तो 9 महीने के बाद लड़का हुआ। बीवी को जाके बताया, पीर ने ऐसा कह दिया, अब 9 महीना इंतजार कर, फिर वही होगी, लड़का होगा, क्योंकि गौसे पाक ने फरमाया। 9 महीने पूरे हुए। आजकल तो डॉक्टर ऐसा जालिम हो गया है, यहाँ कोई डॉक्टर होगा तो बुरा मत मान। 8 जनवरी को डिलीवरी होगी, तो 8 जनवरी को होना उसके यहाँ फिक्स है, टाइम दे देगा 12 बजे लेके आना, और अगर 8 जनवरी को नहीं हुई तो बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा, इतना खर्चा होगा, उसके दिल की धड़कन बंद हो गई, बढ़ गई है, ऐसा वैसा करके ऐसा उसको कंफ्यूज कर देता है बेचारा। आधा तो उसको खुशी जो थी वो अभी आधा मुर्दा हो गया कि बाद में मेरी माई डार्लिंग को क्या होगा, मेरे पप्पू को क्या हुआ, उसके बेचारे का वो बड़ा गिर जाता है, ऐसा हाल होता है। गौसे पाक ने फरमाया 9 महीने के बाद, बीवी से जाके कहा 9 महीने इंतजार कर, लड़का होगा, 9 महीने के बाद लड़का होगा। औलाद हुई, नहा धुला करके बीवी ने देखा ये लड़का, ये तो लड़की है, प्रॉब्लम है कुछ। शौहर को बुलाया, जनाब आपने क्या कहा था कि पीर साहब ने कहा लड़का होगा, बोले हाँ, तो बोले ये तो लड़की है, बोले भाई अल्लाह की नेकबंदी देख लड़का होगा, बोले नहीं देख रहे हूँ लड़की, उसमें कोई कंफ्यूज हो सकता। आके देखा शौहर ने तो वाकई वो लड़की थी, कहा फौरन इसको कपड़े में लपेट दो, मेरी गोद में जो लेके जाता हूँ, ये गड़बड़ कैसे हो गया। पीर साहब ने कहा लड़का और ये हुई लड़की, गौसे पाक की जबान से निकली हुई बात गलत हो ही नहीं सकती। अहद से अहमद, अहमद से तुझको
सब कुछ मकुन
हासिल है। आपने कहा लड़का तो लड़का ही होना चाहिए, पत्थर की लकीर, सोनोग्राफी मशीन गलत हो सकती है, मेरे गौस का फरमान गलत नहीं। लेके गया, सलाम किया, बोले हुजूर आज की दुआ से औलाद हो गई, लेकिन एक प्रॉब्लम है, आपने फरमाया था लड़का, ये हुई है लड़की। तो आप मुस्कुराए और फरमाया कपड़ा हटा, देख लड़का है। हाँ हुजूर देख के लाया हूँ लड़की है। बोले देख तो, जब कपड़ा हटाया तो
लड़का।
कहा हुजूर ये तो लड़की है, बोले मैं बोला लड़की है तो लड़का है, अब तू बोल रहा है लड़की है। आए आए, रब अपने वलियों की जबान को कैसा पूरा फरमाता है, अगर लड़की हो भी गई है तो वो लड़के में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए कि गौस की बात करती नहीं है, अहद से अहमद, अहमद से तुझको
सब कुन मकुन हासिल है।
अदालत ने कहा बारिश हो रही है तो हो रही है, इन्होंने कहा लड़का है तो लड़का, ये कौन है, ये मुस्तफा की अता है, ये उनके चाहने वालों का अंदाज है। اے لوگو اگر اپنے نبشتے تقدیر پر نگاہ رکھو کہ ہم غریب ہیں مفلس ہیں پھر بھی اس پر صبر کرو اور غوث پاک کی بارگاہ میں ولیوں کے دربار میں اپنی دینداری کی درخواست پیش کرو آج سے لکھ لو کہ انشاءاللہ دین بھی سنبھل جائے گا تمہاری دنیا بھی سنبھل جائے گا.
بے شک بے شک
ان کے یہاں بہت بڑا پاور ہے.
بے شک
اس لیے رب فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے لوگو اللہ سے ڈرو اور ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی سنبھل جائے گی. بات سمجھ میں آئی؟ نماز پڑھو گے کل سے, ٹھنڈی کا بہانہ تو نہیں کرو گے. خالی روز ہی تلاش کرتا ہے مسلمان, حضرت تعلیم دیجیے, دھندا نہیں چل رہا ہے. لیکن بندہ کہاں مشین میں جا رہا ہے؟
جی
دھندا نہیں چل رہا ہے تو بندہ بھی تو نہیں چل رہا ہے.
سچ
بندے کو تلاش کرنا ہے رزق, تو رزق دینے والے مولا کی بارگاہ میں. جہاں راشن ملتا ہے وہیں تو خالی تھیلی لے کے جاؤ گے؟ موچی کی دکان پر جاؤ گے کہ 2 کے جی گیہوں دے؟ ایسا مارے گا دوڑا کہ پگلا ہو گیا کہ مینٹل ہاسپٹل میں جا کے اپنا علاج کر. موچی کی دکان میں, باٹا کمپنی کی دکان میں تمہیں چاول ملے گا باسمتی؟
نہیں.
2 چپل مارے گا یہاں کہاں گھس کے آیا ہے؟ جہاں جو چیز ملتی ہے وہی جا.
بے شک بے شک
اللہ والوں کے ہاں کیا ملتی ہے؟ دین ملتا ہے.
بے شک
اور دین مل گیا تو دنیا تیرے ساتھ ساتھ چل کر کے آئے گی. کر کے تو دے, مسجد میں جا, اللہ رزاق کے مطلق ہے, تیرے خالی چھوڑیوں کو بھر
لے. بے شک
دین بھی دے گا دنیا دے گا. اے نوجوانوں سب لو سب لو, ہاتھ میں کڑا پہن لے گا, یہ دھاگا باندھ لے گا, یہ سب غیروں کا طریقہ سیکھ لو. جتنے دھاگے ہیں نکالو.
بہت
یہ غیروں کی پہلے ہمارے بچپن میں نشانی تھی, جس ہاتھ میں دھاگا دکھتا تھا ہم سمجھ جاتے تھے یہ ایریل والا ہے.
جی
آج تو ہر نوجوان یہ شریف کا ہے, داتار شریف کا ہے. یہ جتنے شریف ہیں نا, یہ سب لوگ شریعت پر عمل کر کے شریف ہوئے.
بے شک
اور آج کا مجاور دھاگا بانٹ بانٹ کر کے تمہیں کندھے میں ڈالتا ہے.
جی
ویسے ٹھیک ہے, شریعت پر عمل کرو, غیروں کی نقل چھوڑ دو اور خدا کی بارگاہ میں چھپ جاؤ اور ہاتھ کے گندے اور نالے نکال ڈالو, کڑے اور چھلے کو پھینک دو. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. میرے مصطفیٰ کی غلامی کی بیڑی ڈال لو, غلامی کی بیڑی پیر میں ڈالو, دنیا تمہاری غلام بن جائے.
بے شک
دونوں محسوس تھی. نماز پڑھو, اپنی حالت کو بدلو, جو مدرسے ہیں ان کو چلاؤ, ان کی مدد کرو. آپ کیا مدرسے چل رہے ہیں؟
جی جی یہ بازو میں ہے.
کہاں پر؟
پیچھے.
اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے.
آمین آمین.
بچوں کو پڑھاؤ اور پیسے اس میں دو, یہ خرافات میں چھوڑو. اگر آج سے مسلمان نے طے کر لیا ہم اپنے دینی مدرسے کو مضبوط کریں گے, خدا کی قسم تمہاری بزنس, تمہارا بزنس مضبوط ہو جائے گا.
بے شک
تمہاری اکنامی مضبوط ہو جائے گی. کر کے تو دیکھو, جو کرنا ہے وہ نہیں کرتے ہیں. میرے دوستو, غوث پاک کی 11ویں کا یہی پیغام ہے.